रामाय राम भद्राय राम चंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गोस्वामी जी महाराज राम कथा की महिमा में डूब गए। देखो राम जी की महिमा अभी नहीं लिख रहे हैं, राम जी की महिमा तो आगे लिखने ही वाले हैं। पूरा राम चरित्र ही राम की महिमा है, अभी तो रामायण की महिमा लिख रहे हैं। जब रामायण की महिमा हमारे हृदय में उतरेगी तभी तो हम रामायण को सुनेंगे, रामायण को पढ़ेंगे। और राम जी की महिमा हमारे पढ़ने से जो अपने आप अंदर बैठेगी वो सच्ची महिमा होगी। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनिया चरजुन मान जिनके विमल विचार। राम अनंत, राम जी अनंत है। कह महाराज तुलसीदास जी ये क्या लिख दिया आपने कि राम अनंत है, राम जी तो एक हुए थे। शास्त्र भी कहते हैं कि राम तो एक है, आपने राम जी को अनंत बता दिया। अनंत तो जीव हुआ करते हैं, भगवान अनंत थोड़ी होते हैं, भगवान एक है। राम जी महाराज लक्ष्मण जी को उपदेश देंगे तो वहां यही कहेंगे कि जीव अनंता, जीव तो अनंत है, कोई जीवों की संख्या का पता थोड़ी लगा सकता है। एक पर्वत के छोटे से बिल में कितने कीड़े हैं पता नहीं है, तो कितना बड़ा विशाल संसार, कितने पर्वत, उसमें कितने कीड़े मकोड़े हैं कोई पता ही नहीं। अनंत असंख्य जीव है। आपने तो कह दिया राम अनंत, तो कहते हैं राम अनंत का अर्थ राम के अनंत अवतार हुए, अनंत अवतार। और अमित कथा, जितने अवतार हुए उनकी कथाओं का भी कोई अंत नहीं, खूब कथाएं हुई राम जी की। इसलिए राम जी की कथाओं को सुनो तो अपने में अचरज मत मानना कि भाई ऐसे कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, ऐसा नहीं मानना। क्या हो गया भाई? जिनके विमल विचार, इस प्रकार से अपने मन में कोई संदेह न रखें। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं आप सबको प्रणाम करता हूं क्योंकि आप सब राम कथा के प्रेमी हो। भगवान शंकर के चरणों में सिर रख करके अब मैं भगवान राम के गुणों की महिमा गाता हूं। मैंने ये रामचरितमानस 1631 में लिखा है और मंगलवार के दिन मैंने ये चरित्र अयोध्या के अंदर लिखना प्रारंभ किया है। अयोध्या में ये चरित्र मैंने क्यों लिखा, इसलिए लिखा कि अयोध्या के अंदर रामनवमी के दिन सारे तीर्थ आते हैं। देवता है, नाग है, खग है, असुर है, मुनि है, सब आते हैं, सरयू नदी में स्नान करते हैं, अयोध्या की परिक्रमा करते हैं। तो रामनवमी के दिन ही मैंने ये सब चरित्र को लिखना प्रारंभ किया 1631 में, संवत 1631। वहां सरयू नदी में स्नान करके अपने सारे पापों को धोते हैं। अयोध्या में मैंने क्यों लिखा ये रामनवमी के दिन से ही, क्योंकि अयोध्या है ये राम जी को बहुत अच्छी पुरी लगती है। चार प्रकार की जीव योनियां है, जरायुज, स्वेदज, अंडज और उद्भिज। ये सारे के सारे प्राणी, इनमें से कोई सा भी प्राणी यदि अयोध्या में मरता है तो वो दोबारा जन्म नहीं लेता। इसलिए मैंने देखा कि अयोध्या में राम कथा लिखूं और अयोध्या में लिख करके राम कथा के बहाने से इस अयोध्या की एक ये कथा की धारा सब जगह फैला दूं, ताकि जो जहां है वही राम कथा सुनकर के वो अयोध्या के अंदर मरने से जैसे कल्याण को प्राप्त होता है, ऐसे राम कथा लिख करके राम कथा सुनकर के अपना कल्याण कर दे। इसलिए मैं अयोध्या में बैठ करके ये कल्याण का मार्ग खोल रहा हूं। सबसे बड़ी बात है कि राम कथा कहने से सुनने से काम, दंभ, मान, मद ये सब दूर होते हैं। रामचरितमानस को सुनने से परम विश्राम मिलता है। हमारी दुर्दशा बड़ी विचित्र है, ये मन रूपी जो हाथी है ये विषय रूपी दावानल में चला गया। माने जंगल में आग लग जाए और हाथी क्या करे, चारों तरफ से घिर जाए तब, तो ये मन रूपी हाथी है बड़ा बलवान, कैसे इसको पकड़े। और जंगल में आग लग गई, ये विषय है, ये विषय आग के समान है। देखो आग है वो दिखने में अच्छी लगती है, लेकिन आग में पतंगा पड़ता है, चिड़चिड़ चिड़चिड़ करके मर जाता है वो। ऐसे ही संसार के भोग है वो मन को कल्पना में ही अच्छा लगते हैं। मन से कल्पना बनती है ना, ये भोग है, ऐसे भोगेंगे, ऐसे रस आएगा, ये होगा, ये जितनी बातें सब कल्पना की बातें हैं। वास्तव में जैसी कल्पना करता है वैसे भोग होते नहीं है। तो ये मन रूपी हाथी विषय सुख रूपी अग्नि के अंदर फंस गया, क्या करे, इसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तब क्या करो कि उसी जंगल के अंदर कोई तालाब हो तो वो बेचारा हाथी तालाब में चला जाए। तो ये संसार रूपी जंगल है और विषय रूपी आग है और मन रूपी हाथी है, अब क्या करे। तो आओ रामचरित मानस रूपी सरोवर में आकर डुबकी लगा लो, वो आग कुछ नहीं करेगी। आग देखो सारे जंगल को जला दे लेगी, पर बड़ा भारी तालाब है, तालाब को नहीं जला पाएगी, कैसे जलाए, वहां पर तो आग पहुंच नहीं सकती। ऐसे ये रामचरित मानस बहुत अच्छा सरोवर है। इसका नाम रामचरित मानस भगवान शंकर ने रखा है, वही नाम मैंने रखा है रामचरित मानस। देखो पहले रामायण बोलते थे, अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, ये रामायण ही रामायण नाम मिलेगा सब जगह, रामायण रामायण रामायण, बरवे रामायण, फलानी रामायण। तुलसीदास जी ने कहा कि मैंने रामायण नाम क्यों नहीं रखा, कि मैं कौन होता हूं नाम रखने वाला, भाई भगवान शंकर ने इसका नाम रामचरित मानस रखा। क्यों, क्योंकि रचि महेश निज मानस रखा। भगवान शंकर ने इस रामायण को रच करके अपने मन के अंदर रखा कि मैं समय आने पर पार्वती को सुनाऊंगा। देखो पार्वती नाम नहीं दिया यहां, पाय सुसमऊ शिवासन भाखा। भगवान शंकर ने ये समय पाकर शिवा से कहा, शिवा माने शिवजी की पत्नी। अब शिवजी की पत्नी पहले तो थी सती जी। सती जी ने जब शरीर त्याग कर दिया तब वे पार्वती रूप से आई। तो भगवान शंकर पार्वती रूप से आने से पहले जो सती रूप था ना, उन सती जी को भी सुनाना चाहते थे भगवान रामायण, पर सती जी को नहीं सुना पाए। क्यों नहीं सुना पाए? शिवजी को समय नहीं मिला कि क्या बात थी। शिवजी तो चाहते थे कि मैं सती को रामायण सुनाऊं। क्यों? क्योंकि सती जी ने जीवन में बहुत कष्ट देखा है। सती जी है ये दक्ष की कन्या है, और दक्ष की कन्या होने पर इनका बड़ी मुश्किल से भगवान शंकर जैसा पति मिला, विवाह किया। तो उस समय भी बड़ी विचित्र स्थिति हुई कि देखो कहां शंकर जी के साथ विवाह कर रहे हैं। केवल ने तो कह दिया कि इसके कोई संतान नहीं होगा, ऐसा ऐसा तक कह दिया। भगवान शंकर के साथ विवाह हुआ, उसके बाद दक्ष प्रजापति के और शंकर के टक्कर हो गई, लड़ाई हो गई। भगवान शंकर का अपमान देखा तो सती जी ने अपना शरीर भस्म कर लिया। और भी कई बातें हुई, सती जी को रामचरित्र सुनने को नहीं मिला। वो विचार किया, भगवान शंकर ने विचार किया, मेरी पत्नी होकर के सती को इतना कष्ट क्यों हुआ? मेरी पत्नी है, इसको तो इतना कष्ट होना नहीं चाहिए भाई। तो विचार किया कि इसने रामायण नहीं सुना। तब भगवान शंकर ने देखा कि अब ये वापिस पार्वती रूप में आएगी ना, तो जैसे तैसे इसके मन में रामायण सुनने की इच्छा पैदा करेंगे और फिर रामायण सुनाएंगे। तो रचि महेश निज मानस राखा, अपने मन के अंदर बहुत गुप्त रखा इस रामायण को, इसलिए इसका नाम रामचरित मानस है। दो अर्थ है रामचरित मानस के। हो राम जी का चरित्र है ये मान सरोवर जैसा है, और राम जी का चरित्र है ये भगवान शंकर के मन से पैदा हुआ है, इसलिए इसका नाम रामचरित मानस है। ताते रामचरित मानस बर धरे वो नाम ही हेरी हरषि हर। हर भगवान ने इसको नाम रामचरित मानस रखा। अब बताते हैं कि मान सरोवर की दृष्टि से, कि ये मान सरोवर की दृष्टि से बताते हैं कि रामचरित मानस कैसा है कि इसमें सुमति भूमि थल हृदय अगाधु। देखो कोई तालाब होगा, उसके नीचे एक जमीन होती है और फिर उसकी गहराई होती है। तो श्रेष्ठ भक्त की जो बुद्धि है वो बुद्धि तो है भूमि, और उसका जो भाव होता है वो भाव है हृदय, वो है अगाध। अब इसमें पानी लाना है, देखो तो पानी तो भाई मेघ बरसते है तब होता है, और मेघ है ये बदल कहां से उठते हैं? ये समुद्र में से उठते हैं। तो वेद पुराण रूपी समुद्र है, और वेद पुराण रूपी समुद्र में से संत महात्मा है ना, ये बदल होते हैं। बदल ये बदल बनकर के आते हैं, और पानी कौन सा हो गया कि सुमति भूमि थल हृदय बरस ही राम सुजस बर। राम जी का जो पवित्र यश है उसको भी बरसाते हैं, बरसाते हैं। वो बरसात का पानी मानसरोवर में इकट्ठा हो गया, और भगवान की जो सगुण लीला है वो जल की निर्मलता है, स्वच्छता है। लीला का स्वरूप है वो जल का एकदम पवित्र। देखो कहीं की तालाब इतने साफ होते हैं, आप ऊपर से देखो पैंदा दिखाता है पैंदा। जो तालाब जितना साफ होता है उसका पैंदा उतना ऊंचा ही दिखता है। ये तो ये रहा, ये नहीं रहा भाई, कितना ही गहरा है ये। तो लीला सगुन जो कह बखानी कोई स्वच्छता करी मलहानी। और जल के अंदर एक मिठास होता है, मिठास जल में पवित्रता भी होती है, स्वच्छता भी होती है और एक मिठास भी होता है। मिठास क्या है? प्रेम भक्ति, प्रेमा भक्ति होती है, वो मिठास है। देखो जल पीते हैं तो जल केवल हमारी प्यास को ही दूर नहीं करता है, जल में एक मिठास भी होता है। और आंवला खाया हुआ हो ना, उसके ऊपर पानी पियो, देखो आंवले के मुरब्बे पर पानी नहीं पीना हो कभी, आंवले के मुरब्बे पर नहीं, आंवला यूं ही खावे या सूखा आंवला चूसे उसके बाद आप जल पियो, इतना मीठा जल लगता है, वो बहुत मीठा लगता है। तो जल में जो मीठापन क्या है, वो प्रेमा भक्ति है। और जो हमारे पुण्य है, पुण्य उन पुण्यों की खेती के लिए इस मानसरोवर का जल बहुत काम आता है, सिंचाई के काम आता है, नदी का जल, सरोवर का जल, तो ये हमारे पुण्यों को सींचने वाला होता है। और ये बड़ा सुंदर तालाब, इस तालाब के चार घाट है मानसरोवर के, एक घाट, दो घाट, तीन घाट, चार घाट, चार घाट के ऊपर चार महात्मा बैठे हुए सुनाने वाले। एक घाट के ऊपर तो याज्ञवल्क्य जी और भरत जी महाराज कथा सुन, भारद्वाज जी कथा सुनते हैं, याज्ञवल्क्य जी कथा सुनाते हैं। एक घाट के ऊपर भगवान शंकर कथा सुनाते हैं, पार्वती जी कथा सुनती हैं। एक घाट के ऊपर काकभूषण जी कथा सुनाते हैं, गरुड़ जी कथा सुनते हैं। एक घाट पर तुलसीदास जी कथा सुनाते हैं और बड़े बड़े भक्त लोग कथा सुनते हैं। ये चार घाट है, तो चार घाट में कैसी कैसी कथा है? तो एक घाट तो है ज्ञान की कथा कहने वाली, एक कथा है वो वैराग्य की कथा कहने वाली, एक कथा है वो भक्ति की कथा कहने वाली, और एक कथा है जो दासता को बताने वाली या कर्म को बताने वाली। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और कर्म, इस प्रकार के चार घाट हैं। इन घाटों पर कौन कौन सी क्या क्या कथा सुनाते हैं भाई, तो ये अलग अलग बातें हैं। देखो हमारे भगवान शंकर सुनाते हैं ना, वो पार्वती जी ज्ञान के रूप में प्रश्न करती है तो भगवान शंकर उनको सुनाते हैं। तो कोई कहते हैं ये ज्ञान प्रधान है, और जो है काकभूषण जी हैं ये भक्ति की प्रधानता की बात कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी हैं ये वैराग्य या कर्म की प्रधानता की बात कहते हैं, और तुलसीदास जी महाराज दास भाव की कथा कहते हैं। तो ये चार घाट के ऊपर चार संवाद हैं, और हर घाट के अंदर पेड़ियां हैं, सात पेड़ी। सात पेड़ी कौन से हैं? देखो गिनते रहना, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड और उत्तर कांड, ये सात कांड है ना, ये सात जो है ये पेड़ियां हैं। और भगवान का जो एक प्रताप है, एक दिव्य प्रभाव है, वो अगाध जल है। जल भगवान राम सीता का जो यश है वो अमृत है, अमृत। इस रामचरित मानस में कई प्रकार की उपमाएं दी जाती हैं, वो उपमा है तरंग के समान। सागर चल, पानी है ना, यूं चलता है सागर में, तो तरंगें बहुत ऊंची ऊंची आती है, और तालाब के अंदर यूं एक लहर सी चलती है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जो बीच बीच में उपमा बीती है वो तरंग के समान है। और ये जो चौपाई है, चौपाई ये खूब कमलनिया खिली हुई, पानी के अंदर कई कमल खिले रहते हैं, कमलनिया। यूं 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 छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। रामायण में छंद है, सोरठा है, दोहा है, ये क्या है? ये हर चौपाइयों के बाद आते हैं। तो देखो ये कमलनियां होती है पानी के अंदर, यूं वे एक दूसरे से जुड़ी रहती है नीचे पानी में। ऐसा नहीं कि एक कमलनी अलग है ये अलग, ऐसा नहीं। इनके अंदर से नाड़ियों सब की जुड़ी रहती है, गुंथी रहती है। वो यहां पैदा होगी, वो यहां पैदा होगी, वो यहां पैदा होगी, गुंथी रहती है सब। इसीलिए जिस जलाशय में खूब ये कमलनियां होती है ना, वहां पर स्नान करने के लिए लोग जाते नहीं, जाने कहीं हम फंस जाएंगे। बड़े बड़े तैराक होते हैं, वो भी सावधानी से पानी के ऊपर ऊपर ही रहते हैं, अंदर कहीं फंस जाएंगे। तो छंद है, सोरठा है, दोहा है, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। नाना प्रकार का जो अर्थ है, अच्छा अच्छा भाव है, इसकी जो भाषा है, यही पराग है। कमल के फूल के अंदर एक पराग होता है, वो देखो पत्ते हटाओ फिर इसको करोगे मई मई, छोटे 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 पराग होते हैं, और उन परागों को यदि दबाए तो रस निकलता है, वो मकरंद है। और सुवास सुगंध आती है, आप फूल को भी फेंक दो, आप पराग को भी फेंक दो, पर मसल दिया हाथ में थोड़ा सा है, उसमें सुगंध रह जाती है। कमल की सुगंध, हजारे की सुगंध, मरवे की सुगंध, चंपा की सुगंध, फूल लेकर के यूं करके आप मसल के फेंक दो, सुगंध रह जाती है। और इसमें ध्वनि अवरेब कवित गुण जाती। इस रामायण की जो ध्वनि है, और अवरेब, अवरेब माने टेढ़े मेढ़े ढंग से जो बात कहना, सीधे ढंग से नहीं कहना, टेढ़े मेढ़े ढंग से बात कहना है। बात तो कहना चाहते हो और कहना है और ढंग से, ये अवरेब है। तो ये अवरेब माने टेढ़े ढंगे ढंग से कही हुई बात है। ये क्या है? मछली के समान है। मछली पानी में देखो सीधी यूं चलती बने। ये सब इस जल की विशेषता है। अब इस सरोवर के पास में पुलक बाटिका बागबन, देखो बहुत सुंदर गहरे अर्थ, ये पाठ कर लेते हैं हम लोग, लेकिन पाठ करते करते भी पता नहीं चलता है कि क्या बोलना है, कि पाठ सड़ासड़ कर गए बस। रोज का भी पाठ है, समय हुआ हो पाठ कर लिया, पाठ चलो, अरे पाठ तो कर रहे हो लेकिन क्या बोल रहे हो, कहाँ चल रहे हो, कुछ पता नहीं चलता। थोड़ा थोड़ा जो आता है लीला का प्रसंग वो तो समझ में आ जाता है, बाकी बातें यूं ही रह जाती है। बड़ी गहरी बातें है। पुलक बाटिका बागबन, रामचरित मानस का जब अध्ययन करते हैं, राम जी के चरित्र में डूबते हैं तो पुलकित होते हैं, रोमांचित होते हैं। ये रोमांचित होना क्या है? ये एक बगीचा है, बगीचा है। और रोमांचित होने के बाद सुख सुभ्यंग विहार, वो एक आनंद आता है। कभी कभी पढ़ते पढ़ते ऐसा आनंद आता है इससे बढ़कर कुछ नहीं है, इससे बढ़कर न कोई काम है न कोई स्थिति है, भगवान की लीला में डूबे रहो, बस ये स्थिति बनी रहे, भगवान का रस हमको बराबर मिलता रहे, आनंद मिलता रहे, यही क्या है, ये बहुत अच्छा पक्षी है सुभ्यंग विहार। और मन के अंदर जो पवित्र भाव बनते हैं ये माली है, माली। और कभी कभी चरित्रों को सुनते हुए स्नेह शिशु जल आता रहता है, उसे नेत्र है, सुंदर नेत्र, उससे ये जो है वाटिका है ये सिंचित होती रहती है। जो इस प्रकार से इसको गाने वाले लोग हैं, वो यही तई यही ताल चतुर रखवारे, वो ताल माने इस तलैया के, इस तालाब के रखवाले हैं। जो दुष्ट आदमी होते हैं, देखो दुष्टों का नाम दिया यहां बक और काग, बक माने बगुला और काग माने कौवा। तो बगुला होता है एकदम सफेद होता है, और कौवा होता है वो काला होता है। तो ये दोनों नाम क्यों दिए हो? कि एक आदमी तो सबको स्पष्टतः मालूम देता है कि ये आदमी बड़ा खराब है, उसके आचरण, उसका व्यवहार, उसकी दिनचर्या, उसका स्वरूप, बाहर से भी नहावे नहीं धोवे नहीं, काला कलूटा गंदा, और व्यवहार भी ऐसा ही, वो तो है कौवे के समान। और एक होता है बगुले के समान, जो बाहर से तो बहुत अच्छा रहता है लेकिन अंदर से बहुत खराब। बगुला होता है ना, वो पानी में यूं एकदम स्थिर रहता है, लेकिन पास में से कोई मछली जाती है, यूं मछली मछली को सीधा ले लेता है। तो जो ऊपर से तो बड़े अच्छे बने रहते हैं, लेकिन जो ही उनके सामने भोग आते हैं, उन भोगों के लिए ललचा जाते हैं। कौवा है वो विट भोजी होता है, वो गंदा भोजन करता है, वैसे भी काढ़ा और वो जो है करतूतों से भी खराब। तो अति खलजे विषयी बग कागा, विषयी पुरुष दो प्रकार के होते हैं, बगुले के समान और कौवे के समान। ऐसे आदमी इस तालाब के पास नहीं जाते। वो बोलते हैं कि भाई यहां तो कोई विषय की कथा तो है नहीं, इस मार्ग में जाते ही नहीं। कामी काक बलाक बिचारे, देखो यहां भी बलाक और काक का, वहां बक और काका, बलाक और ये एक ही बात है, बलाक माने बगुला। इसलिए वो रामचरितमानस के पास आदमी हार जाते हैं, कोई मतलब नहीं। इसके पास तो वही आ सकते हैं जिनके ऊपर भगवान कोई विशेष कृपा है, नहीं तो कहते हैं गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। क्या करें जी, घर के बड़े काम धंधे रह गए, आज हमारे ये जरूरी काम हो गया, आज वो जरूरी काम हो गया, ऐसे ये क्या है जरूरी काम जो दिखते हैं, ये बहुत ऊंचा एक पर्वत है, दुर्गम पर्वत। देखो पर्वत भी दो प्रकार के होते हैं, एक सुगम पर्वत होता है, एक दुर्गम पर्वत होता है। जिस पर्वत पर यूं छीन यूं यूं होते होते यूं जा सकते हैं ना, वो सुगम पर्वत होता है। दुर्गम पर्वत होता है, यूं पर्वत है, चढ़ना ही बड़ा मुश्किल, नहीं चढ़ सके, सीधे पर्वत पर कौन चढ़े। तो ये जो काम है, ये मतलब घर के काम धंधे है, ये अति दुर्गम शैल विशाला, कठिन कुसंग कुपंथ कराला। और जो खराब पुरुषों का संग होता है, अरे क्या करोगे रामायण में जाके, वो देखो वो आदमी सत्संग में जाता है, रामायण सुनता है, उसको क्या है, उसका स्वभाव देखा गया, कुछ नहीं, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, फालतू वहां जाकर के समय खराब करने से क्या मतलब, वो ऐसा तो होता नहीं है ऐसा करने से। ये जो तरह तरह की बातें है ना, ये खराब रास्ता है, खराब रास्ता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके वचन बाघ हरिद्याला। ऐसे आदमियों के वचन होते हैं जो रामायण से विमुख करने वाले होते हैं, वो बाघ के समान इनकी वाणी, सिंह के समान डरावनी वाणी, सर्प के समान इनकी फुंकार होती है। इसलिए इनको जो है मुंह नहीं लगाना चाहिए, इस मार्ग के आने के लिए तो भगवान की कृपा के सन्मुख हो ही जाना चाहिए। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनको मानस अगम अति जिनहिं न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी खर्चा नहीं है, अब जावे तो भी खर्चा चाहिए, अब कहीं जाना हो तो टिकट का भी खर्चा हो और भी अपने खर्चा चाहिए, तो इस रामायण में खर्चा क्या है कि श्रद्धा का खर्चा है। श्रद्धा जब आप इसमें श्रद्धा रखोगे तब तो रामायण समझ में आएगी। तो जे श्रद्धा संबल रहित, श्रद्धा रूपी जिनके पास कोई आधार नहीं है और नहीं संतन कर साथ, संतों का साथ नहीं है, उनके लिए मानस बहुत कठिन है, बड़ा ही कठिन है। और यदि कोई जैसे तैसे रामायण में पहुंच भी गया तो वहां जाएगा तो वो सोने लग जाएगा, नींद आने लग जाएगी कि आज रामायण में कौन सा प्रसंग चला है भाई, कि भाई प्रसंग तो अच्छा चला लेकिन पता नहीं था क्या चला। कई लोग ऐसे हैं, उनसे पूछा वो खुद ही बोलते हैं कि आज का सत्संग बड़ा अच्छा हुआ। अच्छा भाई सत्संग बड़ा अच्छा था तो क्या चला सत्संग में प्रसंग, ये याद नहीं, पर सत्संग बड़ा अच्छा हुआ पर प्रसंग याद नहीं। तो क्यों नहीं याद है भाई, क्या क्या कारण हो गया, बस याद नहीं है हमको, ये फालतू की बात है। ऐसे आदमी सत्संग में जाते हैं और वहां जाकर के सो जाते हैं, अच्छा सोए भी नहीं तो ये तालाब के अंदर नहाए भी नहीं, क्यों भाई जैसे ठंडा पानी होता है आदमी जाकर के उसमें डर जाता है। तो जड़ता जाड़ विषम उर लागा, अपनी जो मूर्खता है वही उसको थर 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 थंपा देने वाली सर्दी है। जड़ता जाड़ विषम और लागा, ऐसे आदमी नहीं जा सकते। तो भाई इस धरोवर पर कौन आते हैं, जिनको एक तो सत्संग बहुत प्यारी लगती है, जो कहते हैं सत्संग के बिना हमारा दिन अहला गया, व्यर्थ गया, स्वभाव हो जाता है उनका। जैसे आदमी का भोजन करने का स्वभाव है, जल पीने का स्वभाव है, ऐसे सत्संग करने का भी स्वभाव है। सत्संग करे जो नहाई चाहे ऐसर भाई, सो सत्संग करो मन लाई। सत्संग भी दो प्रकार से होता है, एक तो सत्संग के क्रिया में शामिल हो गए, व्यवहार वैसा ही, घर में जाएंगे व्यवहार वैसा ही, स्वार्थ का, लड़ाई का, झगड़े का, इतना सत्संग में समय लगाते हैं फिर भी अपना व्यवहार नहीं सुधारते। सेठ जी कहते थे कि सत्संग वो नहीं है जो थे अठार मारकन सुनो, तो सेठ जी सत्संग के है तो वो बोलते थे कि सत्संग थारो घर में जो व्यवहार है नहीं वो सत्संग है। ते घर में व्यवहार कैसो करो, अठार तो थे चुपचाप सुनो, और घर में थारो व्यवहार बढ़िया नहीं है, थारे व्यवहार सो लोग प्रसन्न नहीं है, तो थारो सत्संग नहीं हुई हो। सेठ जी आई बात की बात इनमें भी आई है। तो जो नहाई चाहे ऐ सर भाई, सो सत्संग करो मन लाई। राम जी की अच्छा अब क्या हुआ, मान सरोवर से एक सरयू नदी निकली। देखो सरयू नदी है ना, सरयू नदी मान सरोवर से निकलती है, गंगा जी हिमालय से निकली है, और नर्मदा है ये मैकल पर्वत से निकली है, अलग 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 है। हमारी सरयू नदी ये मान सरोवर से निकली है, वहां से आई हुई। तो कहते हैं कि ये रामचरित मानस में जो कविता रूपी नदी निकली है, कविता रूपी चली सुबह कविता सरिता सो, उसका नाम सरयू नदी। अब इस सरयू नदी में हम चल रहे थे तो इसके पास में तीन प्रकार के श्रोता है, उनके नगर बसे हुए हैं। श्रोता त्रिविध समाजपुर ग्राम नगर दुकुल, दो उसके तट हैं। तो कहते तीन प्रकार के श्रोता कौन से होते हैं, एक तो उत्तम श्रोता, एक मध्यम श्रोता और एक अधम श्रोता। एक संत ने व्याख्या की उत्तम श्रोता कौन सा है, जो एक बार सुनता, एक बार निमिष दंड भरी एक ही बार, एक बार बात सुनी हृदय में लगी ओहो ऐसा है ये, निमिष दंड भरी एक ही बार, निमिष माने चुटकी भर, तात स्वर्ग अपवर्ग कर धरी तुला एक अंग, तुलन ताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग का थोड़ा सा भी क्षण बहुत प्रिय होता है, वो थोड़ा लव सत्संग। ऐसे पहला श्रोता वो है कि जो सुनते ही उस बात को धारण करता है। दो नंबर का श्रोता वो है जो सुनता है, धारण करने की चेष्टा करता है, पर पूरी चेष्टा नहीं करता है, थोड़ा थोड़ा चलता है, थोड़ा विषयों में झुका रहता है, फिर चलता है ऐसे ऐसे, थोड़ा गिचपिच चलती रहती है गाड़ी हम लोगों जैसी, वो श्रोता है दो नंबर का। तीन नंबर का वो होता है जो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता। सुनते में भगवान शंकर और पार्वती का जो विवाह है वो तो है उस नदी के अंदर जलचर, राम जी का जो जन्म का प्रसंग है वो है, और चारों ही बाल चरित्र है वो है तरह तरह के कमल के फूल। देखो पहले बताए मान सरोवर के, अब बताए हैं सरयू नदी के, हो ऐसे ये है। और इसमें काई आ गई, नदी के अंदर घाट पर काई आ गई, वो काई कुमति के कई केरी परी जा सुफल विपति घनेरी। ये केकई रूपी जो काई है, केकई की जो खराब बुद्धि उसे फिसल फिसल करके पड़ते गए। कौन पड़े केकई के काई के अंदर, कौन पड़े हो केकई की काई के अंदर, अयोध्यावासी पड़ गए। अयोध्यावासियों को बहुत कष्ट उठाना पड़ा, दशरथ जी महाराज को कष्ट उठाना पड़ा, रानियों को कष्ट उठाना पड़ा, अयोध्यावासियों को कष्ट उठाना पड़ा। काई कुमति के कई केरी परी जा सुफल विपत्ति घनेरी। अब देखो कई कई लोग तीर्थों में जाते हैं और अनुष्ठान करते हैं, तो यहाँ पर तीर्थ पर क्या अनुष्ठान हो रहा है नदी के किनारे कि समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग कलियग खल अवगुण कथना ते जल मल बग काग। भरत जी महाराज का जो चरित्र है सब उत्पात को समाप्त करने के लिए मानो ये कोई जप यज्ञ चालू हो गया है। चरित्र इतना महान है और कलयुग के जितने पाप है वो सब बग और बगुले और कौवे के समान है। आप देखो छह ऋतु होती है इस नदी के किनारे, छह ऋतु है। कौन कौन से? सबसे पहले हिम ऋतु है, मिंगसर और पोष। मिंगसर और पोष है ना, ये ठंड की ऋतु है, ये शिवजी का विवाह और फिर राम जी का जन्म है वो शिशिर है। पोष माघ और फाल्गुन, माघ फाल्गुन जो होती है ना, ये शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाऊ, ये शिशिर ऋतु होती है। ये सब धन धान्य को पैदा करने वाली होती है। बर्णब राम विवाह समा, जो राम जी का और सीता जी का जो विवाह है वो वसंत ऋतु है, और राम जी का जो जंगल में जाने की जो कथा है वो ग्रीष्म ऋतु है, और रावण के साथ युद्ध होना है वो वर्षा ऋतु है, और राम जी का जो अभिषेक हुआ वो शरद है, आसोज और कार्तिक से 12 महीने की है। चारों भाइयों का आपस में जो प्रेम है वो बहुत सुंदर लगता है, बोलना चालना प्रीति परस्पर हास जल माधुरी, ये जल का उस जल का मीठापन है। और मैं जो इतनी विनय करता हूं ये पानी का हल्कापन है। हल्कापन देखो, पानी वही अच्छा माना जाता है जो हल्का होता है। तो आरती विनय दीनता मोरी लघुता ललित सुबारी न थोरी। इस पानी की जो लघुता है, ये लघुता वास्तव में मेरी जो दीन भावना है, मेरा जो विनय है, आप लोगों के सामने जो विनय कर रहा हूं, ये इस पानी का हल्कापन है। इस प्रकार से ये बहुत सुंदर कथा है जो मैं भवानी शंकर को प्रणाम करके आप लोगों को सुनाता हूं। अब देखो सुनाते समय में हमारे भगवान शंकर से कथा नहीं सुना रहे, ये तुलसीदास जी महाराज, तुलसीदास जी महाराज सुना रहे हैं याज्ञवल्क और भरद्वाज का संवाद। भरद्वाज जी और याज्ञवल्क, अब भरद्वाज और याज्ञवल्क के संवाद में आएगा शंकर जी का संवाद, शंकर जी के संवाद में आएगा काकभूषण जी और गरुड़ जी का संवाद। कहते हैं भाई ये बार बार शंकर जी की पूजा कर रहे थे हमारे तुलसीदास जी, तो ये याज्ञवल्क और भरद्वाज से कथा क्यों सुनवाते हैं जी? इसका एक रहस्य है। क्या? कि भगवान शंकर की कथा जो होगी ना वो पार्वती को सुना देंगे, तो आप अंत में देखना पार्वती कहेंगी बड़ी सुंदर कथा सुनाई, मैं निहाल हो गई, तो वह कथा बंद हो जाती है। ये रहस्य की बात है। ये पार्वती जी अंत में बोलती है कि साहब मैं कथा सुनी और बहुत अच्छा लगा हमको ये कथा। नाथ कृपा मम गत संदेह राम चरण उपजेऊ नवनेह मैं कृतकृत्य भयऊ अब तव प्रसाद विश्वेश उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेश। तो भाई भगवान शंकर ने वहां पर कथा समाप्त कर दी। ऐसे ही काकभूषण जी कथा सुनाते सुनाते गरुड़ जी को सुनाते सुनाते गरुड़ जी वहां से कथा सुनकर के बैकुंठ में चले गए। अब बचे हमारे याज्ञवल्क जी। याज्ञवल्क जी ने कथा समाप्त की, ऐसा प्रसंग सीधा सीधा रामचरितमानस में नहीं आता कि साहब अब याज्ञवल्क जी ने कथा सुना दी और अब कथा सुना करके याज्ञवल्क जी चले गए या भरद्वाज जी चले गए, ऐसा नहीं आता। क्यों? इसलिए नहीं आता कि याज्ञवल्क जी और भरद्वाज जी जो कथा कह रहे और सुन रहे हैं वो सारे संसार के लिए कह रहे और सुन रहे हैं। इनकी कथा निरंतर चल रही है, निरंतर इनकी कथा चलती है। रामचरित मानस एक ऐसा है, इसकी कथा हरदम चलती रहती है। इसलिए इस कथा को, इस कथा से ये कथा शुभारंभ करते हैं हमारे तुलसीदास जी महाराज याज्ञवल्क्य जी से। क्या मैं दोनों ऋषियों को प्रणाम करता हूं जो अखंड रूप से कथा कह रहे हैं, अखंड रूप से कथा सुन रहे हैं। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा तिनहिं राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज जी ऋषि है जो प्रयाग में रहते हैं, उनको राम जी की कथा बहुत प्यारी, खूब सुनते रहते हैं। और जब माघ का महीना आता है, मकर संक्रांति का समय आता है, उस समय में सब तीर्थ वहां आ जाते हैं, सब संत भी वहां आ जाते हैं। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में खूब से संत आ गए, बड़ा भारी वहां पर प्रेमानंद हुआ, खूब आपस में बातचीत हुई। बरनई ब्रह्म निरूपण धर्म विदीर बरनई तत्व विभाग कहे भगति भगवंत के संजुत ज्ञान वैराग। तीर्थों में जाते हैं तो लोग सैर सपाटा करते हैं, ये देखे वो देखे देखे, ये बार बार की चीज देखते हैं। अरे तीर्थों में संत महात्मा रहते हैं, उन संतों की बात सुनो। मज्जई प्रात समेत उछाह और कहे परस्पर हरिगुण गाहा। ये तीर्थ में ऐसे रहना चाहिए, लोग तीर्थों का एक मनोरंजन करते हैं, हमने वहां ये देखा, हमने वो देखा, हमने वो देखा। अरे वहां कोई संत देखे, संत तो आजकल है ही नहीं, संतों का तो अकाल पड़ गया, संत कहाँ है। कोई सत्संग, सत्संग भाई हमने तो सत्संग वत्संग तो देखो खूब होती रहती है, हम तो वहां पर तीर्थ देखे, वो पर्वत देखा और वो देखा, राम झरोके से देखा हमने, सेतु बंद रामेश्वर देखा हमने, वहां विशाल भगवान का मंदिर देखा, अयोध्या में हमने राम जन्मभूमि देखी, ये देखी वो देखी। अरे सत्संग, भाई सत्संग तो हमने नहीं देखा, तो वो तीर्थ यात्रा जो है अधूरी रह गई। तीर्थों में जाने पर सत्संग करना चाहिए। देखो हमारे ऋषि मुनि कैसे ब्रह्म निरूपण, ब्रह्म निरूपण माने निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म की व्याख्याएं हो रही है। कहीं धर्म विधि, कहीं पर यज्ञ आदि धर्म हो रहे हैं, कहीं वर्णई तत्व विभाग और कहीं भगवान की भक्ति के विषय में बात हो रही है, कहीं ज्ञान वैराग की चर्चा हो रही है। इस प्रकार से लोग तीर्थों में स्नान करते थे, रहते थे, भरद्वाज ऋषि के आश्रम में रहते थे। कहते हैं एक बार की बात है, याज्ञवल्क जी महाराज आए, भरद्वाज जी से बड़े प्रेम से मिले। सब ऋषि मुनि तो चले गए, नाये डोए सत्संग किए और चले गए, मकर मज्जी गवनई मुनि वृंदा। अब एक बार ये याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज ऋषि के वहां आए। भरद्वाज ऋषि ने कहा कि महाराज आप महात्मा आ गए, आपका तो उपयोग लेना ही चाहिए। अब मैं आपसे कुछ पूछूं तो डर भी लगता है और लाज भी आती है। डर तो इस बात का लगता है कि आप बड़े आदमी हो, बड़े आदमियों से कोई बात पूछें तो थोड़ा भय संकोच तो रहता ही, बड़े का बड़प्पन है ना, वही अपने आप में एक हमको भयभीत कर देने वाले इतने बड़े आदमी। और लाज इस बात की आ रही है कि उम्र हमारी चली गई, बाल सफेद हो गए, मरने की तैयारी हो रही है, लेकिन अभी तक भी हमको भगवान में जैसा प्रेम होना चाहिए वैसा प्रेम नहीं हुआ। देखो बड़ी विचित्र बात है, वो जितना भगवान में प्रेम बढ़ता जाता है उतना ही भक्त को प्रेम कम दिखता है। देखो भाई नाराज मत होना, शास्त्रों की बात संतों की बात है। जैसे कोई आदमी पैसा कमाता है, जितना पैसा बढ़ता है, जितना पैसा बढ़ता है वो पैसा उसको कम लगता है, कम लगता है। एक जगह कोई बात हो रही थी, मद्रास की बात है, आपस में लोग बात कर रहे थे अच्छे अच्छे पैसे वाले। आजकल उनका धंधा इतना अच्छा नहीं चलता है। क्या कितना भाई, यही आजकल सब खर्चा निकाल के 350 करोड़ रुपया बचता है, ज्यादा नहीं बचता। अभी 350 करोड़ यूं करते हैं, 350 करोड़। अब 350 करोड़ साल का जिसके सब खर्चा निकाल करके बचता है, ये कुछ नहीं बचता यूं, तो उनको 350 करोड़ दिखता है। ऐसे संत महात्माओं को जितनी वे भक्ति करते हैं, क्या है इसमें, क्या गड़बड़ जितने जितनी भक्ति करते हैं उतना उतना उनको भक्ति कम मालूम देती है। तो हमारे भरद्वाज ऋषि बोलते हैं कि क्या बताएं, हमको आपसे पूछने में भी लाज आती है, हमने कोई भक्ति तो की नहीं महाराज, मेरे अंदर मोह बहुत है, अस विचारी प्रगटाऊ निज मोह, मेरा मोह प्रकट करता हूं महाराज। अब बताओ आप, ये रामनाम का प्रभाव संतों ने पुराणों में उपनिषदों में बहुत गाया है, शंकर भगवान भी खूब नाम का जप करते रहते हैं, जो ज्ञान के भंडार है शंकर वो भी नाम जप करते हैं, काशी में बैठे हैं, और राम जी की भी महिमा बड़ी विचित्र हम सुनते हैं पूछते हैं। अब हम पूछते हैं ये राम कौन है हमारे पास, ये कौन है? एक राम अवधेश कुमार, हमने सुना एक तो दशरथ जी के बेटा थे राम जी, उनका चरित्र दुनिया जानती है। अब कहते हैं भगवान, अब महाराज उनको भगवान कैसे समझे? भगवान तो वो होता है जो हरदम आनंद में रहता है, भगवान तो वो होता है जो सबको जानता है। तो नारी विरह दुख लहु अपारा, अपनी पत्नी के विरह में तो खूब डूबे रहे वो। और कहते हैं भगवान को कभी क्रोध नहीं आता, तो भयउ रोष रावण मारा, उन्होंने बड़े क्रोध में आकर रावण को मार दिया। अब समझ में नहीं आता कि ये कोई राम वो है कि दूसरे है कि कौन है। महाराज मेरे मन में मोह होता है, याग बल्क जी हंसेर बोले वाह बड़े चतुर हो आप, आपको तो राम जी के विषय में सुनना है, आपके कोई मोह नहीं है, आप सोचते हो कोई ऐसा प्रश्न करे कि ताकि हमको कोई बड़ी बड़ी सुनने को मिले। जैसे बछड़ा है वो गाय के दूध पीते पीते थोबा लगाता है, थोबा इसलिए लगाता है थोड़ा और दूध जाए, बछड़ा यो पीछे के टांगों पर जोर रख करके वो खूब आनंद में आता है, बछड़ा दूध पीते यूं थोबा लगता है। चाहो तूने राम गूढ़ा, राम के गुप्त गूढ़ रहस्यमय आप चरित्र सुनना चाहते हो, अब बात समझ में आई? तो देखो भाई, आपने जैसे हमसे आज प्रश्न किया है ना, ऐसे ही भगवान शंकर के सामने पार्वती ने भी प्रश्न किया था, पार्वती जी ने भी प्रश्न किया था। तो मैं तुमको अब पार्वती का और भगवान शंकर का जो संवाद हुआ वो मैं संवाद सुनाता हूं। कहु सो मति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, भयउ समय जई हेतु जई सुनु मुनि मिटई विषाद। तुम्हारे मन में जो मोह हुआ है वो मैं पार्वती और शंकर भगवान के संवाद से सुनाता हूं। क्यों जी आप खुद क्यों नहीं बोलते? ये महापुरुषों की रीति है, बड़े आदमियों की रीति है, वो स्वयं कुछ अपनी तरफ से बात नहीं कहते, वो बड़े पुरुषों के कहने, वो बड़े पुरुषों के कथन के सहारे से बोलते हैं। देखो भाई गीता में ये लिखा है, रामायण में ये लिखा है, महापुरुषों ने ये बात कही है, पुराणों में ये बात कही है, आपकी जची नहीं है क्या? अपने जची हुई रहती है, पर अपनी जची हुई बात कहने में कहीं अहंकार आ जाएगा, इसलिए बड़े पुरुषों के नाम से बात कहनी चाहिए, सदा ही भगवान भगवत संबंधी चर्चा बड़े पुरुषों के नाम से कहना अच्छा लगता है। भयउ समय जई हेतु जई सुनु मुनि मिटई विषाद। अब भगवान शंकर की कथा याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को आगे सुनाएंगे। जय सीताराम 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 जय सीताराम जय
सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
सियावर रामचंद्र की
जय
मोर मुकुटवंशी वाले
की जय
अनंत श्री हरि रामदास जी महाराज
की जय
अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं
की जय।
राम।